जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Rama Rama Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Hare Rama Rama Ram Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Rama Rama
Jayo Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe
Jayo Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe
Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Sri Radhe, Jaya Radhe, Radhe.
Jagannath Swami Nayana Patha Gami, Nayana Patha Gami Bhava Tume.
जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी बाबा तुम्हें
जगन्नाथ
जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय गौरनिता जय गौरनिता गौरनिता जय गौरनिता जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद श्रील प्रभुपद
श्रील प्रभुपाद की। सभी लोग हाथ जोड़कर मेरे बाद दोहराएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 अध्याय 16 श्लोक क्रमांक 24। अध्याय का नाम है भगवान परशुराम द्वारा विश्व के क्षत्रियों का विनाश। शब्दों का परिचय इस प्रकार, स्वदेहम जमदग्निः तु लब्ध्वा संज्ञानलक्षणम् ऋषिणां मण्डले सः अभूत् सप्तमः रामपूजितः। श्लोक को मेरे बाद दोहराएं, स्वदेहं जमदग्निस्तु स्वदेहं जमदग्निस्तु लब्ध्वा संज्ञानलक्षणम् लब्ध्वा संज्ञानलक्षणम् ऋषिणां मण्डले सभूत् ऋषिणां मण्डले सभूत् सप्तमो रामपूजितः सप्तमो रामपूजितः स्वदेहं जमदग्निस्तु लब्ध्वा संज्ञानलक्षणम् ऋषिणां मण्डले सोऽभूत् सप्तमो रामपूजितः स्वदेहं जमदग्निस्तु लब्ध्वा संज्ञानलक्षणम् ऋषिणां मण्डले सोऽभूत् सप्तमो राम पूजितः। शब्दों का अनुवाद इस प्रकार है, स्वदेहम अपना शरीर, जमदग्नि मुनि जमदग्नि, तो लेकिन, लब्ध्वा इसे पाकर, संज्ञान लक्षणम जीवन ज्ञान तथा स्मृति के सारे लक्षण, जीवन ज्ञान तथा स्मृति के सारे लक्षणों से युक्त ऋषिणाम ऋषियों के मंडले सात नक्षत्रों के समूह में सह वह जमदग्नि आभूत बन गए, सप्तमः सातवां राम पूजितः परशुराम द्वारा पूजित होकर। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभयगणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की अनुवाद, इस प्रकार परशुराम द्वारा पूजा किए जाने पर जमदग्नि के अपने पूर्ण स्मृति के साथ पुनः जमदग्नि को अपने पूर्ण स्मृति के साथ पुनः जीवन प्राप्त हो गया और वे सात नक्षत्रों के समूह में सातवें ऋषि बन गए। तात्पर्य, ध्रुव तारा के चारों ओर चक्कर लगाने वाले सात नक्षत्र सप्तर्षि मंडल कहलाते हैं। हमारे लोक मंडल के सबसे ऊपरी भाग में स्थित इन सातों नक्षत्रों में सात ऋषि निवास करते हैं, जिनके नाम है कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि तथा भरद्वाज। ये सातों नक्षत्र रात में रोज दिखते हैं और 2400 घंटे में ध्रुव तारा की एक परिक्रमा कर लेते हैं। इन सात नक्षत्रों के साथ अन्य नक्षत्र भी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। ब्रह्मांड का ऊपरी भाग उत्तर कहलाता है और निचली भाग दक्षिण। हम लोग अपने सामान्य व्यवहार में भी, यहाँ तक कि मानचित्र का अध्ययन करते समय भी, ऊपरी भाग को उत्तर मानते हैं। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजना शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वंदे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथानितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखानितं च। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो मावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यान्नामिने गौरतिसे नमः। संकर्षण कारण दशाई गर्भोदशाई च पयोदिशाई देशस्य जस्यां सह सकल सनित्यानन्दाक्षर रामं शरणं ममास्तु। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी दिशभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ओम नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री श्री राधा गिरिधारी जी की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, गौर निताय की, जय श्री लोक उपाद की। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम की कक्षा में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से। श्रील प्रभुपाद जी की अशेष कृपा है कि प्रतिदिन हमें श्रीमद् भागवतम जैसे पवित्र ग्रंथ से सुनने मिल रहा है। हम अभी 9वें स्कंद के 16वें अध्याय तक पहुंच चुके हैं और जैसे 9वां स्कंद खत्म होगा फिर श्री कृष्ण की दिव्य लीला है 2वां स्कंद। अध्याय चल रहा है परशुराम जी प्रकार से इस संसार के क्षत्रियों को विनाश किए। क्षत्रियों को क्यों विनाश किए भगवान? वैसे भगवान के द्वारा तो चातुर्वर्ण मया सृष्टम, फिर वही विनाश कर रहे हैं। वैसे उन क्षत्रियों को विनाश किए थे जिन लोगों ने ब्राह्मणों को मान नहीं दिया करते थे या उन्हें तकलीफ दिया करते थे या अपने क्षत्रिय अपने पदवी को लेकर अहंकार वशीभूत होकर प्रजाओं की सेवा नहीं करते थे, ऐसे क्षत्रियों को वो खत्म कर दिए थे भगवान परशुराम जी ने। ये भगवान के सत्यावेश अवतार परशुराम जी, तो उनकी कथाओं को हम अभी सुन रहे हैं। अद्भुत लीलाएं। पिताजी ने बोला माँ को मारने के लिए मार दिए खटाक से, ऐसे अद्भुत लीलाएं परशुराम जी किए हैं। ये पूरी कथा हम लोगों ने इस अध्याय में सुने हैं कि सुनते सुनते अभी ऐसा स्थिति में हम लोग पहुंचे हैं कि जमदग्नि जो परशुराम जी के पिताजी है वो मरे पड़े हुए थे ना अभी तक, क्योंकि वो कीर्तिवीर्य अर्जुन के बच्चे लोगों ने वो मौका का फायदा उठा के जमदग्नि का गला काट दिए थे, तो परशुराम नहीं थे। वापस आने के बाद वो छोड़े नहीं, उन सबको मार डाले है ना, कीर्तिवीर्य अर्जुन के सभी पुत्रों को मार डाले थे। फिर बाद में उन्होंने भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ प्रारंभ किया परशुराम जी ने, वो भी कुश घास में अपने पिताजी का शरीर फिर उसके सर को इकट्ठा रखते हुए फिर यज्ञ किए। ये सब कथाएं हम लोगों ने पिछले श्लोकों में सुना। यज्ञ संपन्न भी हो गया, सरस्वती नदी में स्नान इत्यादि भी कर लिए। आज का श्लोक का कहना है कि जमदग्नि मुनि को फिर से शरीर मिला और शरीर मिलने के बाद वो यहां नहीं रुके, इस पृथ्वी पर नहीं रुके, वो चले गए स्वर्ग में, ऐसे आज का श्लोक का कहना है। तो वैसे आज एक विशेष पवित्र दिन है, दशहरा, विजय दशमी, दुर्गा जी का पूजा करते हैं हम लोग इस दिन पे। आज के दिन महान पंडित रावण अपने 10 सर को हराए थे, इसीलिए दशहरा। और साथ साथ में हमारे ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय के जो मूल आचार्य है श्रीपाद मध्वाचार्य, उनका भी आविर्भाव दिवस है आज, है ना। इस प्रकार से बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है हम सब के लिए। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा पहले भागवतम का श्लोक का चर्चा करेंगे, फिर बाद में दुर्गा देवी के बारे में या दशहरा के बारे में, फिर बाद में मध्वाचार्य के एक दो छोटे लीलाओं को श्रवण करेंगे। स्वदेहम जमदग्निस्तु लब्ध्वा संज्ञान लक्षणम ऋषिणाम मंडले स्वभूत सप्तमो राम पूजितः। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परशुराम जी के द्वारा पूजा किए जाने के बाद राम पूजितः सह जमदग्निः तु संज्ञान लक्षणम स्वदेहम लब्ध्वा ऋषिणाम मंडलो सम अभूत। अभूत मतलब बन गए। भगवान परशुराम जी के द्वारा पूजा पाने के बाद जमदग्नि मुनि ने, उन्हें शरीर प्राप्त हुआ था, वो भी शरीर कैसा था, सारे याददाश्त उनको थे, पूर्ण स्मृति, पहले की सभी याददाश्त उनको था। हम सब जानते हैं जैसे ही हमारा बॉडी चेंज होता है, हमारा शरीर बदलता है, तो हमें पूर्व जन्म की कथाएं याद नहीं रहता है ना। मगर यहाँ पे संज्ञान लक्षणम स्वदेहम, उसका अर्थ है कि सभी ज्ञान और स्मृति के साथ उनको शरीर मिला था, वही शरीर सब याददाश्त था उनका, सब याद था। ऐसे शरीर प्राप्त हुआ और प्राप्त होने के बाद वो कहाँ गए, लब्ध्वा प्राप्त किए, क्या प्राप्त किए, ऋषिणाम मंडलों, ऋषियों के मंडलों में, मंडल में सप्त ऋषि मंडल में सप्तमो सप्तम स्थान को ग्रहण किए। ये श्लोक है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भी इसी बात को कहते हैं, वो इस सप्त ऋषियों के बारे में या सप्त ऋषि मंडल के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। हमारे ब्रह्मांड में सप्त ऋषि होते हैं, सात ऊंचे कोटि के ब्राह्मण। कितने लोगों ने सप्त ऋषियों को देखा यहां से, रात्रि के समय है ना, सप्त ऋषि मंडल दिखाई पड़ते हैं, प्रतिदिन ये दिखते हैं। ये सप्त ऋषि मंडल हमारे इस लोक में होते हैं, वहां पे सातवां ऋषि बन गए जमदग्नि मुनि। तो हम कुछ सप्त ऋषियों के बारे में जानेंगे। वैसे नाम तो प्रभुपाद जी ने लिख लिए हैं परपोट में, ऋषियों का नाम इस प्रकार है, कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भरद्वाज, भरद्वाज, ऐसे सात ऋषि हैं ना, तात्पर्य में लिखा हुआ। शंका हो रहा है कुछ नामों का इधर उधर, क्यों मालूम है, क्योंकि प्रत्येक मैनेजमेंट जब बदलता है, सब सारे मंत्रिमंडल बदल जाते हैं, सही है कि नहीं, इलेक्शन होता है, जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बदलता है, गवर्नमेंट बदलता है, सारे मंत्रिमंडल भी चेंज होते रहते हैं। ठीक वैसे ही ये यूनिवर्सल गवर्नमेंट है, विश्व सरकार ना? हम लोग देशीय सरकार, राज्य, राष्ट्र पॉलिटिक्स और देश पॉलिटिक्स, घर की पॉलिटिक्स में इतने उलझे हुए रहते हैं कि विश्व के पॉलिटिक्स के बारे में जानने के लिए प्रयास नहीं करते। एक बार विश्व की पॉलिटिक्स जानने लगेंगे तो बहुत उसमें भी मजा आएगा। तो हम सब जानते हैं कि समय की अवधि किस प्रकार से है, हमारा 6 महीना देवताओं का 1 दिन, ऐसे बढ़ते बढ़ते ब्रह्मा जी तक, उसमें बीच में मनु होते हैं, मनु जानते हैं, मनु, ये जब भी मनु बदलते हैं ना, मनु के नीचे की पूरी मैनेजमेंट बदल जाता है। जब एक मनु बदलेंगे तो नीचे की सारा मैनेजमेंट बदल जाता है। ब्रह्मा जी के 1 दिन में 14 मनु आते हैं और एक मनु के अंदर 71 दिव्य युग होते हैं, 71 दिव्य युग एक मनु के अंतर्गत। एक दिव्य युग में 4 युग होते हैं, एक दिव्य युग में 4 युग, एक कली, द्वापर, त्रेता, सत्य, और सब एक दूसरे की द्विगुणा, 4 गुणा ऐसा है ना, उसको दिव्य युग कहते हैं। ऐसे 71 दिव्य युग होगा तो एक मनु होते हैं, 71 दिव्य युग के बाद मनु चेंज हो जाते हैं, दूसरा मनु बनता है, ऐसे आठवें स्कंध में बहुत मनुओं का वर्णन आता है ना। अभी आपने कौन से नंबर के मनु चल रहे हैं? हाँ, कौन सा मनु अभी राज कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं? नहीं याद है कौन सा मनुअंतर चल रहा है अभी? सातवां मनु का समय चल रहा है अभी, है ना, सेवेंथ मनु। तो जब एक मनु बदलते हैं उस समय क्या क्या चेंज होते हैं मालूम है? सूर्य बदल जाते हैं, चंद्र बदल जाते हैं, इंद्र बदल जाते हैं, सप्तर्षि बदल जाते हैं, ये सभी लोग बदल जाते हैं, दूसरे दूसरे लोग उस पोस्ट में आते हैं। तो इसलिए अलग अलग मनुओं के समय पे अलग अलग सप्तर्षि होते हैं। अभी सातवें मनु के अंतर्गत ये सात जन है, कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भरद्वाज, ये अभी के मनु के अंतर्गत है ये सात सप्तर्षि। समझ में आया? ये सप्तर्षि मनुओं के अंदर में बदलते रहते हैं। और आगे का लिस्ट भी भागवतम में है, आगे फिर से कौन देंगे सप्तर्षि, कुछ कुछ नाम दिया हुआ है। तो फिर ये सप्तर्षि रहते कहाँ हैं, इनका काम क्या है, ये भी थोड़ा जानकारी होना चाहिए। ये पूरा भौतिक ब्रह्मांड 14 लोगों का है, 14 प्लेनेटरी सिस्टम, 14 लोग हैं। उसमें से हमारे पृथ्वी लोक से, भूलोक से ऊपर 6 हैं और भूलोक से नीचे 7 लोग हैं, है ना, ये हम सब जानते हैं। पृथ्वी के ऊपर के लोगों को स्वर्गलोक बोला जाता है, नीचे के लोगों को पाताल लोक बोला जाता है, इस प्रकार से 3 लोक ऐसा हम सुनते हैं, है ना, परंतु 14 लोग है, 14 प्लेनेटरी सिस्टम है। उसमें से पृथ्वी के ऊपर 6 है, पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी को मिलाने से 7 और पृथ्वी के नीचे 7, ऐसे 14 है, ये ब्रह्मा जी ने बनाया 14 प्लेनेटरी सिस्टम। उसमें से सबसे ऊंचा है सत्य लोक, जहां पे ब्रह्मा जी रहते हैं, है ना, ये सब कॉमन है, हम बार बार सुनते रहते हैं। मैं ये क्यों बतला रहा हूं कि सप्तर्षि कहां पे रहते हैं, उस जगह को बतलाने के लिए मैं ये पूरा बता रहा हूं, ताकि एक ग्राफिकल आइडिया आ जाए हमारे मन में पूरा, ताकि हम किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले सत्यलोक, है ना, सत्यलोक के बाद आता है तपलोक, ब्रह्मा जी रहते हैं, फिर बाद में तपलोक, ऋषि मुनिगण जहां पे तपस्या करते हैं आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए, फिर जनलोक, फिर महरलोक। सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, 4 लोगों के बाद शुरू होता है ये देवलोक, स्वर्गलोक शुरू होता है 4 लोगों के बाद। ये महरलोक के तुरंत बाद आता है पोलस्टार, ध्रुव तारा। ये कौन सा ध्रुव तारा है, जहां पे कौन रहते हैं, ध्रुव महाराज निवास करते हैं, जो कि भौतिक संसार की प्रलय के समय भी वहां पे प्रलय नहीं होगा, वो जगह है ये ध्रुव तारा या ये ध्रुव लोक, जिसे पोल स्टार कहते हैं। ये भौतिक जगत में वैकुंठ है, भौतिक जगत में वैकुंठ, जहां पे कुंठा नहीं, और जो प्रलय के समय पे भी प्रलय का कोई नामो निशान वहां नहीं होगा, वो पोल स्टार है, मगर है कहां पर, भौतिक जगत के अंदर, वो भी 4 स्तरों के बाद, और हमें दिखता है ये पोल स्टार दिखता है। ये ध्रुव तारा कितने लोगों ने देखा ना, बहुत तेज दिखता है ना ध्रुव तारा, ये पोल स्टार। और ठीक ध्रुव तारा के तुरंत बाद ये 7 ऋषिगण रहते हैं, सप्तऋषि, ठीक ध्रुव तारा के नीचे, सत्यलोक, जनलोक, सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, महरलोक के बाद ध्रुव तारा आएगा, और ये पोलस्टार, पोलस्टार के तुरंत बाद थोड़ा सा नीचे ये रहेंगे, ये सप्तऋषि रहते हैं। 7 अलग अलग प्लैनेट्स है 7 ऋषियों के लिए, वो वहां के अधिष्ठाता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि 24 घंटे में एक बार ये 7 ऋषियों ने मिलकर ध्रुव लोक का परिक्रमा लगाते हैं। केवल उतना ही नहीं, ये पोल स्टार से बाकी सारे ये स्वर्ग की ये प्लेनेटरी सिस्टम है, ये स्वर्ग लोक का नक्षत्र इत्यादि चालू होते हैं, ग्रह नक्षत्र। इसके बाद ध्रुव तारा के नीचे सभी ग्रह नक्षत्र आते हैं, और सभी ग्रह नक्षत्र ये इसको केंद्र बिंदु बनाकर, किसको, पोल स्टार को केंद्र बिंदु बनाकर उसका परिक्रमा करते हैं, घूमते रहते हैं पोल स्टार को केंद्र बिंदु बनाकर ध्रुव तारा को। और इस पोल स्टार के पास, ध्रुव तारा के पास चार पांच लोगों का घर है, इंद्र का, अग्नि का, धर्मराज का, इंद्र अग्नि धर्म और एक दो जन को ही है, ऐसे तीन चार लोगों का घर है। कहां पे? ध्रुव तारा के पास। उसके नीचे फिर सप्तर्षि आते हैं, वहां से स्वर्ग लोक चालू होता है। एक्चुअली देखिए, एक जो 14 प्लेनेट है ना, एक प्लेनेट यानी एक 14 भुवन, ये 14 भुवन में से एक भुवन, मतलब ऐसे मत सोचिए खाली पृथ्वी जैसा, नहीं, उस भुवन में, उस मंडल में बहुत सारे नक्षत्र ग्रह लोक होते हैं, अलग अलग एक सेक्शन है इतना बंच, वहां पे बहुत सारे नक्षत्र ग्रह नक्षत्र लोक रहेंगे, अलग अलग प्लेनेट्स अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग देवताओं के लिए होता है। फिर उस स्तर के नीचे फिर दूसरा स्तर, दूसरा भुवन आएगा, दूसरा प्लेनेटरी सिस्टम आएगा, फिर उन लोग का पूरा प्लेनेट्स वहां पे, अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग प्लेनेट्स होते हैं। ऐसा ऐसा नहीं पृथ्वी मतलब एक ही पृथ्वी है और उसके ऊपर हम मनुष्य रहते हैं, ऐसा नहीं, ये बहुत सारे ग्रह नक्षत्रों को मिलाकर वो प्लेनेटरी सिस्टम बनता है। ठीक वैसे तो स्वर्ग लोक मतलब जहां से पोल स्टार से शुरू होता है, फिर ये पृथ्वी लोक तक जितने ग्रह नक्षत्र तारे लोक सब दिखते हैं, वो सब कुछ ये स्वर्ग लोक के अंतर्गत आते हैं, देवलोक कहा जाता है। ये लोग अलग अलग जगह में रहते हैं, ऐसा नहीं पृथ्वी के ऊपर सब बिल्डिंग बनाकर रह रहे हैं। इंद्र रहते हैं पोल स्टार के पास, अग्निदेव वहां रहते हैं, धर्म रहते हैं वहां पर, उसके ठीक नीचे ये सात ऋषिगण रहते हैं, फिर उसके नीचे नीचे अलग 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 देवताओं का निवास स्थान है, इस प्रकार से बनाया गया। वैसे और कॉम्प्लिकेटेड अगर समझने के लिए प्रयास करेंगे तो भगवान स्वयं शिशु मार का स्वरूप लेकर वहां पे लटके हुए रहते हैं। शिशु मार डल्फिन, डल्फिन जानते हैं, एक मछली होता है ना, उसी प्रकार का स्वरूप है भगवान का। भगवान अपने आप को एक डल्फिन का स्वरूप बनाकर, ये कैसे, उनका पूंछ ऊपर होता है और उनका मुंह नीचे होता है पृथ्वी लोक तक, और पूंछ के एकदम अग्र भाग में ये ध्रुव तारा रहता है, और उसको केंद्र बनाकर, एक बनाकर सभी ग्रह नक्षत्र उसके और आकर्षित होते हैं और उसके चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं। और ठीक उसके नीचे अर्थात कमर, मान लीजिए ये पूंछ है और ये शरीर है, तो ये जो जगह है ना कमर बोलते हैं जिसको, यहां पे सप्तर्षि रहते हैं। उस मछली की पूंछ भगवान स्वयं और डॉल्फिन का रूप लेते हैं। अगर ये पूंछ माना जाए, सर नीचे है और वो भी ऐसे अर्धचंद्र आकार का, और यहां पे जो एकदम कमर की जगह है वहां पे सप्तर्षि रहते हैं। अभी आइडिया आया सप्तर्षि कहां रहते हैं? फिर उसके नीचे बाकी बाकी ग्रह नक्षत्र रहते हैं और एकदम से उनके चारों तरफ चक्कर काटते रहते थे। तो ये जगह हो गया, सप्तर्षि रहते कहां पर है, काम क्या है इनका सप्तर्षियों का? भागवतम में बताया गया एक जगह, द सेवन सेंटली सेजेस हु आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ द वेल बींग ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द यूनिवर्स, दे सर्कुमुलेटिंग द सुप्रीम अवॉर्ड ऑफ लॉर्ड विष्णु नोन एज ध्रुवलोको द पोल स्टार। ये सारे सात ऋषि रोज क्या सोचते रहते हैं मालूम है? ये पूरा विश्व उन्नति के बारे में, वेलफेयर के बारे में सोचते रहते हैं। उनका स्थिति क्या है मालूम है? देवताओं के बीच में ऊंचे कोटि के ब्राह्मण है। जैसे हम यहां पे क्षेत्रीय ब्राह्मण शूद्र होते हैं ना, वैसे देवताओं में भी ब्राह्मण होते हैं, ऊंचे कोटि के ब्राह्मण होते हैं, क्षेत्रीय भी होते हैं। वैसे देवताओं में से जो ऊंचे कोटि के ब्राह्मण है ना, ये सात लोग हैं, देवलोक के ब्राह्मण ये सात लोग हैं, ये सप्तऋषि हैं। करते क्या हैं? प्रतिदिन बैठकर इस विश्व के भलाई के बारे में सोचते रहते हैं, मीटिंग करते रहते हैं कि कैसे विश्व का भलाई हो, और इंद्र इत्यादि देवताओं को अपने अपने पोस्ट को कैसे संभाले उनको ये सलाह सुसर दे रहते हैं। Seven stars occupied by greatly saintly persons who are always thinking of the welfare of their entire universe. ये सारा विश्व का वेलफेयर है ना, प्रगति के बारे में, अच्छाई के बारे में वो सोचते रहते हैं, ये उनका काम है। और रहते कहाँ है? Where the heap might be on the Sishumara or the seventy saintly sages like Vasishtha and Angira, वो कमर के पास, मछली का कमर के पास वो लोग रहते हैं। ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन भागवतम में से ही मिल जाता है अपने को। ध्रुव लोको द अवार्ड ऑफ लॉर्ड विष्णु विद इन दिस यूनिवर्स इज सिचुएटेड इन 13 लाख योजनास फ्रॉम द सेवन स्टार। ये सप्तऋषियों से ध्रुव लोक का डिस्टेंस कितना है मालूम है? 13 लाख योजन दूरी है सप्तऋषियों से, ध्रुव लोक तक का दूरी 13 लाख योजन ऐसा करके बताया गया है। ये खास करके श्रीमद् भागवत में ये सप्तऋषियों के बारे में इतना सा इन्फॉर्मेशन हमको प्राप्त होता है। खैर मैंने जो कुछ भी अभी बताया है ना पूरा डायग्रामिकली, उसको मैं वहां दिखाना चाहता हूँ ताकि एकदम से वो हमारे मन में फिट हो जाए कि एग्जैक्टली कहाँ है ना। साउंड दे ये सात लोक हैं। सबसे पहला गया सत्य लोक, फिर दूसरा तप लोक, तो बहुत सारे तारे तारे दिख रहे हैं, तो अलग अलग उसके अंदर प्लैनेटरी सिस्टम है। सबसे ऊपर सत्य लोक है, ये भगवान का विश्व रूप विराट रूप जिसको कहते हैं। उसके बाद तपलोक है, ये तपलोक दिखाया जा रहा है अभी। साउंड कम कर दे रहे, कम कर। ये तपलोक है जहां पर ऋषि मुनिगण तपस्या करते रहते हैं आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए। फिर नीचे नीचे आ रहा है कैमरा, मतलब तपलोक से नीचे आएंगे जन्मलोक और महरलोक के बाद स्वर्गलोक तक आते हैं। हम लोग रात को देखते हैं पूरा प्लेनेट जो है वो वहां पे पोल स्टार हमको ध्रुव तारा दिखाई पड़ता है, वो देखिए वो ध्रुव तारा दिख रहा है। और ये सब कुछ सारे नक्षत्र ध्रुव तारा में फिक्स हुए रहते हैं। सभी ग्रह नक्षत्र उस ध्रुव तारा के चारों तरफ घूमते रहते हैं उसको केंद्र बनाकर। ये देखिए ऊपर ध्रुव तारा है, वो देखिए मछली जैसा दिखाई पड़ रहा है बीच में, वो शिशुमार नक्षत्र बोला जाता है उसको। वे स्वयं भगवान का ही स्वरूप है, उनका मुंह उनका सर नीचे है और ऊपर उनका पूंछ, और एकदम पूंछ के अग्रभाग पर वो है पोल स्टार जिसको ध्रुव तारा कहते हैं। वहां से सभी नक्षत्र कनेक्टेड है और उनके चारों तरफ घूमते रहते हैं। ये ध्रुव तारा, साउंड कम कर। ये ध्रुव तारा का विशेषता क्या है मालूम है? ये भौतिक जगत की वैकुंठ है, और आप सबको मालूम है जब देवता लोगों को प्रॉब्लम होता है तो भगवान विष्णु के पास जाते हैं क्षीर सागर के किनारे, श्वेत दीप वो इसके अंदर है, ध्रुव तारा ध्रुव लोक के अंदर, वहां पे भगवान क्षीर सागर में लेटे हुए रहते हैं। ये शिशुमार योगी मुनियों ने उस शिशुमार का ध्यान लगाते हैं क्योंकि वो दिखता है, वो भगवान का ऐसे स्वरूप दिखता है ब्रह्मांड में। ये श्वेत दीप है जो कि ध्रुव लोक के अंदर है वैकुंठ। देवता लोगों को जब भी समस्या होता है, जब भी उन लोगों ने क्षीर सागर के किनारे जाते हैं, ये वो जगह है, ये ध्रुव लोक में, वो वैकुंठ में नहीं जा पाते हैं, ये भौतिक जगत के अंदर ही वो लोग जा पाएंगे। और साथ साथ में वहां पे ध्रुव महाराज भी रहते हैं, निवास करते हैं। ये देखिए ये कैसे हमारा ग्रह रहते हैं उसके बारे में। पृथ्वी के एकदम नजदीक सूर्य है, उसके बाद चांद, फिर नक्षत्रगण, फिर अलग अलग नक्षत्र ग्रह। बृहस्पति, शनि, शनि के बाद सप्तऋषि, सप्तऋषि के बाद ध्रुव लोक, पोल स्टार वो ऊपर वाला, इस प्रकार से हमारा ग्रह नक्षत्र बंद कर दो। इस प्रकार से हमारा पूरा विश्व है स्वर्ग लोक का। और ये ध्रुव लोक असलियत में भगवान विष्णु निवास करते हैं। अनेकों जगह भगवान विष्णु ध्रुव महाराज कहते हैं, यू विल कम, वी विल नॉट कम बैक टू दिस मेटेरियल वर्ल्ड, फॉर यू विल रीच द मत स्थानम माई अबोर्ड, देयरफॉर ध्रुव लोक और द पोल स्टार इज द अबोर्ड ऑफ लॉर्ड विष्णु विद इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड। भगवान कहते हैं ध्रुव महाराज को कि आप बाद में मेरे स्थान पे आ जाओगे, ताकि आपको वापस इस भौतिक जगत में आना नहीं पड़ेगा। वो जगह यहीं पे है, इस भौतिक जगत के अंदर की ध्रुव लोक है, वो आध्यात्मिक जगत में नहीं, वहां पे ध्रुव महाराज गए हुए हैं। तो आज के श्लोक के बारे में बस इतना ही कि ये सप्तऋषि बन गए जमदग्नि और उस जगह पर रहते हैं, इस संसार के वेलफेयर के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। और इस तरह से 24 घंटे में एक बार इस ध्रुव लोक का परिक्रमा करते हैं साथ साथ में सभी देवता। क्यों मालूम है? क्योंकि ये आध्यात्मिक जगत है, वैकुंठ है, वहां पे भगवान विष्णु रहते हैं, इसलिए उनका परिक्रमा करते हैं। और साथ साथ में भगवान के उच्च कोटि का भक्त ध्रुव महाराज वहां पे निवास करते हैं, इसलिए उसका परिक्रमा करते हैं। तो वहां पे ये जमदग्नि मुनि चले गए, अभी उस प्रकार का शरीर को प्राप्त किए और वहां पे चले गए। और उस पोल स्टार से लेके हमारा पृथ्वी तक का जो बीच का जो नक्षत्र मंडल है वो स्वर्ग है, वहां पे सभी देवी देवता अलग अलग जगहों पे अलग अलग ग्रहों में निवास करते हैं। ये था आज के श्लोक के बारे में चर्चा। ब्रह्म संहिता के श्लोक का श्रीरंग जैसा दिखाई। तो आज दशहरा है, थोड़ा सा दशहरा के बारे में और साथ में मध्वाचार्य जी के बारे में, उनके दो चार छोटे छोटे मधुर लीलाओं को हम लोग सुनेंगे जो कि बार बार हम लोग सुनते आ रहे हैं। दशहरा का सिग्निफिकेंस सब लोग को मालूम है कि हर बार सुनते हैं कि आज के दिन दशहरा क्यों है, क्योंकि भगवान राम है ना रावण के ऊपर विजय प्राप्त किए थे, है ना, इसलिए विजया दशमी कहते हैं। और उनके दस सर को काट डाले थे ऐसा कुछ, इसीलिए उनको दशहरा, हरा मतलब हराना, दस मतलब दस, दस सर को रावण ने हराए थे इसलिए दशहरा। इसलिए पूरे भारत में क्या करते हैं आज के दिन, किसका पूजा करते हैं? दुर्गा देवी का, क्योंकि आज के दिन दुर्गा देवी ने महिषासुर का भी वध किए थे, है ना। और अभी नवरात्रि का आखिरी दिन है ना, शायद आज नवरात्रि चल रहा था, कितना अच्छा दुर्गा देवी का पूजा कर रहे हैं, रात को सिनेमा गाना चलाकर नवरात्रि पालन कर रहे थे हम लोग, फिर अभी आज आखिरी दिन है। सिनेमा गाना चला के गरबा खेलने से दुर्गा माता प्रसन्न हो जाएगी, ऐसे सोचे, ऐसे प्रसन्न नहीं होती है दुर्गा माता, या दुर्गा देवी का भक्ति करने पर या उनकी प्रसन्न करने पर हम इस भौतिक संसार से निकल जाएंगे या हमको सब कुछ यहाँ पे अच्छा फैसिलिटीज मिल जाएगा, ये भ्रम है। तो थोड़ा सा भक्ति सिद्धांत महाराज जी ने दुर्गा देवी के बारे में क्या बताए हैं थोड़ा सा देखेंगे, है ना। बहुत सुंदर तरीके से भक्ति सिद्धांत महाराज बतलाते हैं दुर्गा देवी के बारे में। ब्रह्म संहिता में इसका अनुवाद और तात्पर्य भक्ति सिद्धांत महाराज जी का है, मैं उस श्लोक को बोलूंगा, कृपया आप लोग मेरे बाद दोहराएंगे। क्षीरम यथा क्षीरम यथा दधिविकार विशेष योगात मेरे सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, छाये वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा, छाये वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा, इच्छानुपमपि यस्य च तिष्ठते सा, गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी ने इस श्लोक में दुर्गा देवी के बारे में बतलाते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी जी के द्वारा, श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज की। अनुवाद, भौतिक जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय की साधन कारिणी चित्त शक्ति की छाया स्वरूपा माया शक्ति है, जो कि सभी के द्वारा दुर्गा नाम से पूजी जाती है, जिनकी इच्छा के अनुसार चेष्टाएं करती है, उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूं। ब्रह्मा कहते हैं इस भौतिक संसार का सृष्टि सृजन स्थिति प्रलय पालन और प्रलय, ये तीनों काम जो करती है वो कौन है मालूम है? चित्त शक्ति अर्थात भगवान की आध्यात्मिक शक्ति राधा रानी की छाया है। तो फिर क्या हुआ ना, ये जो दुर्गा जिसको दुर्गा कह के लोग पूजा करते हैं, जिनकी इच्छाओं के अनुसार काम करती है, उस गोविंद को मैं प्रणाम करता हूं। समझ में आया? ब्रह्मा जी कहते हैं इस भौतिक जगत का सृष्टि स्थिति पालन करने वाली आध्यात्मिक जगत की राधा रानी की छाई है, छाया है, और ये जो जिसको दुर्गा कहते हैं संसार में, ये दुर्गा जिनके आदेशों के अनुसार काम करती है, उन गोविंद को मैं प्रणाम करता हूं, ये ब्रह्मा जी कहते हैं। ये दुर्गा देवी है। खास करके बाहर के लोगों नहीं तो सही, हम हरे कृष्ण भक्तों को सभी के बारे में सही सही इंफॉर्मेशन होना चाहिए। कभी कभी बाहर के लोग कंप्लेन करते हैं हरे कृष्ण वाले कृष्ण के अलावा और किसी के बारे में नहीं जानते हैं। नहीं, ये हरे कृष्ण वाले कृष्ण के साथ साथ बाकी सभी देवी देवताओं के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे ऐसे भी भक्त है जिनको बोलेंगे शिव जी के बारे में बताओ तो एक हफ्ते तक शिव जी के बारे में शिव जी की कथा भी कर सकते हैं, दुर्गा जी के बारे में भी कथा कर सकते हैं। ये सभी देवी देवताओं के बारे में सही इंफॉर्मेशन हरे कृष्ण वालों के पास रहता है, अतः वे गोविंद की उपासना करते हैं। ऐसा नहीं कि हमको कृष्ण के छोड़कर और किसी के नहीं मालूम इसलिए कृष्ण को पकड़ते हैं, कुछ ऐसे कंप्लेन करते हैं। तो हमें कृष्ण भक्त होने पर भी दुर्गा देवी के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए, नहीं तो हम भी क्या करेंगे, ये इन सारे चीजों में भी मग्न हो जाएंगे। कभी कभी कुछ ऐसे भी हम भक्त होते हैं, दीक्षा भी लिए हुए रहते हैं, नवरात्रि उपवास करेंगे, गरबा में जाएंगे, वो सब करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ज्ञान ना होने पर इधर आके बहुत भक्तिभाव से सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, कमी किस चीज का मालूम है? ज्ञान की। इसलिए श्री प्रभुपाद एक सेंटेंस लिखते हैं, श्री प्रभुपाद का एक एक सेंटेंस ना एक एक मंत्र जैसा, कितना बहुत अच्छे से काम करता है वो। भक्ति ज्ञान के अलावा सिद्धांत के अलावा, सिद्धांत के बिना भक्ति जो है वो क्या है, भावुकता है। और भक्ति के अलावा सिद्धांत मानसिक उहापुह, समझते, मेंटल स्पेकुलेशन। नॉलेज है भक्ति नहीं है तो मेंटल स्पेकुलेशन है, और भक्ति है नॉलेज नहीं है तो भावुकता है। तो ऐसे कई भक्त हैं, बहुत अच्छी तरह से यहाँ भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे, कृष्ण की सेवा करेंगे, बहुत भक्त। और जैसे नवरात्रि आएगा दुर्गा देवी का भी भक्ति भाव से सेवा करेंगे, उपवास करेंगे, फिर गणेश चतुर्थी आएगा तो उसमें भी एकदम भक्ति भाव से करेंगे, उधर भी रोएंगे, कीर्तन में नाचेंगे, आरती में गाएंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि सिद्धांत का जानकारी नहीं है ऐसा। इसलिए हमें थोड़ा बहुत, हमारे आचार्यों ने बहुत सुंदर तरीके से सब कुछ आसान कर दिया है हमारे लिए, है ना। तो क्यों ना हम सारे आचार्यों के और ग्रंथों को भक्तों की मुखारविंद से सुन के थोड़ा बहुत ये सिद्धांत का भी, ज्ञान का भी जानकारी होना चाहिए, जो कि हमें भक्ति में भी लाभप्रद है। तो ये दुर्गा देवी है कौन? सबसे पहला उत्तर तो यही है कि ये श्री कृष्ण की सेविका है, सबसे पहला उत्तर। दूसरा, ये राधा रानी की छाया स्वरूप है, एक्सपांशन है, आध्यात्मिक जगत को चलाती है राधा रानी। तो इस भौतिक जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय, ये तीनों कार्यों के लिए दुर्गा देवी को कभी कभी डाउट होगा, क्योंकि अरे सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी, प्रलय के लिए शिव जी, पालन के लिए विष्णु जी हैं, मगर ये कैसे ना है, मगर साथ साथ में ये तीनों काम करती है दुर्गा देवी। उतना ही नहीं, शिव जी भी केवल प्रलय नहीं, सृष्टि के समय में भी साथ देते हैं, उनके अलावा सृष्टि हो ही नहीं सकता शिव जी के अलावा, क्योंकि मेन रोल निभाते हैं शिव जी भी। ये सारे चीजें हम लोग को थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। तो दुर्गा देवी आध्यात्मिक शक्ति की छाया स्वरूपा है। खास करके दुर्गा देवी को हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? माता, अम्बे माता, जगदम्बे, हाँ बोलते हैं ना, दुर्गा माता। तो क्यों दुर्गा देवी को हम दुर्गा माता कहते हैं पता है? क्योंकि असलियत में दुर्गा देवी हमारा माँ है ना। कुछ लॉजिकल स्टेटमेंट, बच्चे का शरीर किससे बनता है, किन किस शरीर के अंगों से बनता है बच्चे का शरीर? हाँ, माँ की शरीर के अंगों से, है ना, बच्चे का शरीर बनता है। ठीक वैसे ही हमारे सारे भौतिक संसार में निवास करने जीवों का शरीर किन चीजों से बना हुआ है? पंचभूतों से। और ये पंचभूत क्या है? प्रकृति है, समझ में आया? तो ये प्रकृति को स्वयं दुर्गा देवी, उनकी शरीर के अंगों से हमारा शरीर भी बनता है। केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षी वृक्ष इत्यादि सब, ये सबके लिए दुर्गा देवी माता है, क्योंकि उनकी शरीर के अंगों से ही हमारा शरीर बना हुआ है। उतना ही नहीं, बच्चे को 9 महीना तक 10 महीना तक कहां अपने गर्भ में धारण करती है माता, फिर बाद में गोद में, तभी हम लोग निवास कहां पे करते हैं? प्रकृति के गोद में। उतना ही नहीं, बच्चा जन्म होने के बाद उनका लालन पालन भरण पोषण कौन करता है? माता देखभाल करती है। हम लोग जो खा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ये सब किसका देन है? प्रकृति की, है ना। और कोई मांसाहारी बोल सकता है हम मांस खाते हैं, जिसका मांस खाता वो कैसे जी रहा है, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, ये सब कुछ प्रकृति के ऊपर ही निर्भर है। तो इस प्रकार से इसीलिए हम दुर्गा माता को माँ कहते हैं। अच्छा, तो फिर और एक डाउट होगा, अगर दुर्गा माता माँ है, पिताजी कौन है? क्योंकि पिताजी के बिना माता गर्भधारण नहीं कर सकती, बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है ना। पुरुष की आवश्यकता जरूर है, पुरुष और स्त्री की मिलाप से ही ये संतान उत्पन्न होता है। और हम जानते हैं पूरे संसार का, आध्यात्म हो या भौतिक जगत का, संसार का पिताजी कौन है? भगवान कृष्ण। और अभी हम बतलाए कि दुर्गा देवी माँ है, कैसे होगा ये? वैसे दुर्गा देवी इस संसार में पार्वती है, वही दुर्गा है ना, और पार्वती किसकी पत्नी है? शिव जी की पत्नी है। मगर उधर भगवद गीता में कृष्ण क्या कहते हैं? अहम बीज पद पिता, मैं पिताजी हूं बीज प्रदान करने वाला। और इधर हम देख रहे हैं कि दुर्गा देवी माँ है, तो ये सब कैसे होगा? क्योंकि भगवान ये जो बीज प्रदान करने वाला कार्य है किसके द्वारा संपन्न करते हैं? शिव जी के द्वारा संपन्न करते हैं। इसलिए सर्व कारण कारणम कृष्ण है, मगर वो आध्यात्मिक जगत छोड़ के नहीं आते हैं। उनके सारे एक्सपेंशन, उनके विस्तार, उनके सेवकों के द्वारा इन सारे कार्यों को करते हैं। भौतिक जगत में तो आते ही नहीं बिल्कुल, खास करके ये कार्य के लिए, सृष्टि सृजन के लिए नहीं आते हैं। तो वो ये जो बीज प्रदान करने वाला कार्य करते किसके द्वारा? तो याद होगा ब्रह्मा जी ने इस संसार को बनाने के बाद हलचल नहीं हो रहा था ना, बाद में महाविष्णु जो कारण सागर में लेटे हुए हैं वो दृष्टिपात करते हैं भौतिक प्रकृति के ऊपर। वो दृष्टिपात करते समय दो शक्तियां प्रवेश करती है, एक है जीव शक्ति और एक है काल शक्ति। और ये दोनों शक्ति जब ये प्रकृति तब तक हलचल नहीं हो रही थी, जैसे जीव शक्ति काल शक्ति प्रकृति को स्पर्श किया फिर प्रकृति ने हिलना दुलना चालू किया, क्योंकि वो बीज प्रदान किया गया। भले ही वो शक्ति था मगर वो शक्ति असलियत में शंभू है। आ कहां से रहा था? महाविष्णु की आंखों से, दृष्टि से, मगर वो शंभू है शिव जी। और किसके साथ मिले वो आके? दुर्गा देवी के साथ, प्रकृति के साथ। वहां पे शिव यानी पुरुष, प्रकृति दुर्गा देवी के साथ का मिलन हुआ, फिर वहां से जीव जगत का सृष्टि हुआ। ये सृष्टि का रहस्य है, समझ में आया? तो इस प्रकार से सृष्टि में साथ देते हैं शिव जी। इसलिए जो बीज प्रदान करने वाला कार्य है भगवान का, वो शिव जी के द्वारा कराते हैं। इसलिए दुर्गा देवी शिव जी की पत्नी है, पार्वती। और वैसे शिव जी है कौन? क्षीरम यथा गति विकार विशेष योगा, वो क्षीर से जैसे दही बन जाता है ना दूध से, ठीक वैसे भगवान कृष्ण ही शिव बने हुए हैं, ठीक वैसे राधा रानी ही पार्वती बनी हुई है। अभी समझ में आया किस प्रकार से दुर्गा देवी यहाँ पे सेवा में रहते हैं? ये सृष्टि के समय का कार्य है और वे हमारी माँ है, कैसे माता है ये उसका समझता। अभी हम देखेंगे दुर्गा शब्द का अर्थ क्या है, दुर्गा क्यों कहते हैं, ये हम लोग सुने हैं बार बार। दुर्गा शब्द दुर्ग से आता है, दुर्ग यानी किला, फोर्ट, किला समझते हैं ना, किला है ना, मतलब जिसके अंदर से निकल पाना बहुत कठिन है। ये पहले की राजा महाराजाओं ने एक एक किला बना के रखा करते थे, जब शत्रु आक्रमण करता था तो उसके अंदर चले जाते थे, तो उसके अंदर शत्रु आसानी से जा नहीं पाएगा, अगर गलती से कोई शत्रु चला गया तो बाहर नहीं आ पाएगा, उसको किला कहते हैं। दुर्ग का अर्थ होता है दु यानी दुष्कर, ग मतलब गमन, जिससे निकल पाना अत्यंत दुष्कर है उसको दुर्ग कहा जाता है। तो वो राजा महाराजाओं का किला हुआ करता था। जेल, जेल के दीवारें देखें बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं ताकि कैदी लोग उधर से भाग नहीं सकते हैं, उसको दुर्ग किला, उसके अंदर उससे निकल पाना बहुत कठिन है, उसे दुर्ग कहते हैं। और दुर्गा मतलब इस प्रकार की दुर्ग का रखवाला या रखवाली, जो रखवाल करते हैं उसका नाम है दुर्गा। अर्थात ये जो दुर्ग रूपी कारागार जेल, उस जेल का जो देखभाल करते हैं वह है दुर्गा देवी। जस्ट लाइक जेलर साहब, जेल में जेलर साहब होते हैं ना, वैसे दुर्गा देवी है। तो दुर्ग क्या है? ये भौतिक संसार। एक बार कोई व्यक्ति इस जन्म मृत्यु रूपी चक्कर में फंस जाता है तो यहां से निकल पाना, इस भव सागर से, इस भौतिक बंधन से निकल पाना अत्यंत दुष्कर है, इसीलिए उसको इसको दुर्ग कहा गया, इस भौतिक संसार को। कभी कभी छटपटा के वो स्वर्ग लोक तक, जलोक तक भी जा सकता है, फिर वापस गिरेगा। फिर कभी कभी छटपटा के नीचे की ओर भी जा सकता है, मृत्यु लोक तक, पाताल लोक तक, फिर कभी कीड़ा है ना, फिर पशु, कभी पक्षी, फिर कभी मनुष्य, मगर इससे निकल नहीं पाता है जीव। यह है दुर्ग, भौतिक जगत। इस भौतिक जगत रूपी दुर्ग का जो देखभाल करती है वो है दुर्गा। और ये भौतिक संसार एक प्रकार का जेल है, कारागार है। और जेल में रहते कौन है? भक्त लोग कौन रहते हैं जेल में? नहीं, कैदी लोग। तो हम सब कौन है? कोई तैयार नहीं है ना अपने आप को कैदी स्वीकार करने के लिए। कई प्रश्न है, जेल क्यों? क्योंकि सरकार जेल इसलिए बनाती है उनके आदेशों को पालन ना करने पर वहां पे दंड दी जाएगी। भौतिक संसार क्यों? भौतिक संसार यूं कि भगवान के आदेशों को पालन नहीं करेंगे या उनके अलग उनसे अलग होकर भोग करने के लिए हम लोग प्रयत्न करेंगे तो हमको यहां डाल दिया जाएगा, ये भौतिक संसार। अच्छा, हम तो भगवान के संतान है, अंश है, इधर क्यों आए? क्योंकि छटपट आए, भगवान अपने को गोद में लिए हुए थे। भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज एक सुंदर उदाहरण देते हैं, बोलते हैं माता पिता बच्चे को अपने गोद में लिए हुए रहते हैं, पिताजी, बच्चा छटपटाता है कि मुझे नीचे छोड़ दो मैं खेलूंगा, पिताजी बोलते हैं कि बेटा नीचे उतरेगा तो तेरे लिए सेफ्टी नहीं है, कीड़े काट सकते हैं, बसेस आ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। बच्चा बोलता है नहीं, मुझे गोद में नहीं रहना है, मुझे नीचे खेलना है, स्वतंत्र खेलना है, मुझे साथ में नहीं खेलना आपके साथ। तो इतना परेशान करता है कि पिताजी बोलते कि जा यहां खेल, एक गार्डन में रख देते हैं, बहुत सारे खिलौने दे देते हैं उसको, ये सब खिलौना ले और खेल, और एक आया को खड़े कर देते हैं भाड़ा देकर, आया देखते रहना इसको, ज्यादा नाटक करेगा ना दो चाटा लगाना, बहुत परेशान किया। वो दुर्गा देवी आया है, और खिलौना क्या है? इस भौतिक संसार की सारे वस्तु और ये सारे संबंधी, ये कुटुंब, परिवार, पोस्ट, ये सब खिलौना है। हम इन सब के साथ खेल के मस्त रहते हैं, नाटक करते हैं तो बराबर हमको देती है दुर्गा देवी। संसारिक लोग सोचते हैं दुर्गा देवी का उपासना करने पर धन दौलत बुद्धि ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त होगा, ये भ्रम है उन लोगों का, क्योंकि दुर्गा देवी ये सब नहीं देती है, वो दुख देती है, कष्ट देती है हमको। बाहर के लोगों को अगर हम बोलेंगे दुर्गा देवी हमें कष्ट देती है, वो हजम नहीं कर पाएंगे। हाँ, दुर्गति नाशिनी दुर्गा, आप बोलती है दुर्गति देती है ना? हाँ, वो कष्ट प्रदान करती है, वो कैसे? हमारे कर्मों के अनुसार। उदाहरण जेलर साहब है, हमको थर्ड डिग्री का सजा मिलेगा या सेकंड डिग्री का सजा मिलेगा या फर्स्ट डिग्री का सजा मिलेगा, देता कौन है? जेलर साहब। मगर तय कहां हुआ आता है? उसकी गुनाह के अनुसार, मैंने क्या गुनाह किया उस हिसाब से सजा लिखी जाएगी, उस सजा को जेलर साहब ने देंगे। ठीक वैसे हम कौन से कर्म किए उस कर्म के अनुसार का जो दुख हमको मिलना चाहिए वो प्री प्लानिंग हुआ रहता है, वो सिस्टमेटिक, और दुर्गा देवी हमको देती है वो दुख। तो ये सारा संसार में जो हमको अधिभौतिक अधिदैविक अधिआत्मिक क्लेश ये जो मिलता है वो दुर्गा देवी के द्वारा मिलता है। उनका त्रिशूल देखे ना, त्रिशूल ये अधिदैविक अध्यात्मिक अधिभौतिक का तीन शूल है, और उसके साथ हमको मारती रहती है, इसलिए तीन दुख अपने को मिलता है, ये दुर्गा देवी है। आप बोलेंगे अरे प्रभु जी माता करके बोले और माँ कैसे हमको दुख दे सकती है? दे सकती है, कभी कभी माँ मारती है कि नहीं बच्चों को गुस्से में आके? क्यों? वो उत्पटांग करेंगे तो, क्योंकि हम पिताजी का ऑर्डर का पालन नहीं करते हैं, इसलिए हमें कष्ट देती है, दंड देती है, और हम उनका ही वर्शिप करने लगेंगे। जैसे जेल के अंदर जेलर साहब का तात्पुरुषी करेगा कोई कैदी, क्या जेलर साहब उसको जेल से निकाल देगा? नहीं निकाल सकता है। क्या कर सकता है? जेल के अंदर अच्छा कमरा दे सकता है, उसके टीवी लगा देगा तुम्हारे लिए, एसी लगा सकता है, गेम्स दे सकता है, जेल से बाहर नहीं भेज सकता है तुमको, क्योंकि उसकी बस की बात ही नहीं है, वो ये देवताओं की बस की बात नहीं है इस भौतिक संसार से बाहर जाना। एक मजेदार उदाहरण याद आया देवताओं की बस की बात को बोलने पर, मुत्स्यकुंड का कथा सुने रहेंगे आप लोग, है ना? ओ, भगवान ने कालनेमी को लेकर उधर मरवा दिए थे मुत्स्यकुंड के पास। मुत्स्यकुंड कौन थे मालूम है? पहले लगभग त्रेता या सतयुग के टाइम पे देवताओं का असुरों के बीच में युद्ध छेड़ा, तो इतना मार धाड़ हुआ कि देवता लोग हारने वाले थे, और उस समय कार्तिकेय नहीं थे सेना नायक, कमांडर ऑफ चीफ नहीं थे। देवता लोगों ने दिमाग लगाया कि किसको लाया जाए, ये उस समय उतना शक्तिशाली हुआ करते थे, कभी कभी देवताओं को हेल्प करने के लिए जाते थे, दशरथ महाराज ऐसे ऐसे महाराज हुआ करते थे। तो देवताओं ने आके रिक्वेस्ट करके मुत्स्यकुंड को लेके गए किसके लिए? देवताओं का कमांडर बनने के लिए। वो देवताओं का कमांडर बने, सदियों तक असुरों के साथ युद्ध छेड़ा और युद्ध करते 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 अंत तक उसको असुरों को परास्त कर ही डाले। किनके अधीनता में? मुत्सुकुंद के अधीनता में। खुश हो गए देवता लोग, असुर लोग वापस चले गए। तब तक कई युग बीत चुका था, क्योंकि ये झगड़ा कहाँ हो रहा था? स्वर्ग में। और वैसे असुर लोग भी हमसे ऊपर ही रहते हैं, हमसे नीचे नहीं रहते। असुर लोग ऊपर, उसके ऊपर देवता लोग रहते, उन दोनों के बीच में झगड़ा चलता रहता है हमेशा। और कई सदियां बीत चुका था, तो इनके सारे सगे संबंध खत्म, युग बदल गया था। और उस समय कार्तिकेय का भी जन्म हो चुका था, तो उनका कमांडर अब चीफ बन गए, अभी देवताओं का आवश्यकता नहीं मुत्सुकुंद का। तो देवता लोग बोले कि हे महानुभव मुत्सुकुंद महाराज, आप बहुत अच्छी तरह से हमारा हेल्प किए, हम लोग जीत भी गए, और अभी क्या है, कार्तिकेय जी भी आ गए, अभी आप जो इच्छा वर मांग सकते हैं हमसे। मुत्सुकुंद बुद्धिमान थे, वे बोले, और उनको देवता लोग बोले कि देखो तुम अभी नीचे भी जाओगे ना, वहां तुम्हारे कोई सगे संबंधी मिलेंगे नहीं, पत्नी बच्चे कोई नहीं, सब खत्म। तो मुत्सुकुंद बोले कि ठीक है, ऐसे करना कि मुझे मुक्ति दे दीजिए, इस भौतिक संसार से निकलना है मुझे, वैकुंठ जाना है। देवता लोग बोले कि ओह सॉरी, दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल हियर, ये सुविधा यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये हमारे बस की बात नहीं है कि हम तुमको मुक्ति प्रदान कर लें। मुक्ति प्रदान तो केवल मुकुंद ही कर सकते हैं, मुक्ति प्रदाता मुकुंद। मुत्सुकुंद बोला कि तो फिर क्या क्या वर मांगो? परेशान हो गए, बोले कि तुम कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम मुझे सोने के लिए आशीर्वाद दे दो यार, मुझे सोने का है, इतना दिन थक गया हूं काम कर करके, ना और कुछ मांगो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए संसार में, सब कुछ देख चुका हूं, यहां पे तो बिल्कुल नहीं रहूंगा, स्वर्ग में कितना परेशानी है तुम लोगों को मैंने खुद देखा, मैं नहीं बताता था तुम्हारा हाल हो जाता। मुत्सुकुंद खुद बचाए उन लोगों को, बोला कि स्वर्ग भी बेकार है, इसलिए स्वर्ग मत सब बेकार है, एक काम करो मुझे सोने नींद की आशीर्वाद दो। इंद्र आदि देवताओं ने बोले तथास्तु, सो जाओ। लेकिन नहीं, और फिर सोचे, सो जाऊंगा तो कभी कभी इनको फिर से झगड़ा होगा तो फिर आके उठा देंगे मेरे को नींद से। देवता लोग ऐसे, इंद्र हमेशा डरता रहता है ना, तो बोले कि महाराज इंद्र मुझे ऐसा वर दो कि मुझे नींद से जो जगाएगा पहला दृष्टि से वो भस्म हो जाएगा। वो एक्चुअली वर क्यों मांगे मालूम है? इंद्र के लिए, उनको डाउट था इंद्र कभी भी उठा सकता है उनको युद्ध करने के लिए, क्योंकि इंद्र तो हमेशा लड़ते रहते लोगों से। तो देवता लोगों ने उनका वर दिया कि ठीक है, तुमको जो उठाएगा बीच नींद में वो मर जाएगा। तब आके मुत्सुकुंद इधर रहे थे, वर मांगे थे इंद्र के लिए ताकि इंद्र डर के मारे उठाए नहीं, मगर बेचारा कालने में पिस गया उसमें। तो ये है देवता, ये देवता देवी कभी भी हमको मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते हैं, उनके पास वो योग्यता नहीं है मुक्ति प्रदान करने के लिए। ठीक वैसे हम अगर दुर्गा देवी को उपासना करेंगे तो हमको उसके अंदर फैसिलिटीज दे सकती है। हाँ अच्छा, बॉम्बे सेंट्रल में या एकदम हाईफाई सोसाइटी में घर दे सकती है, गाड़ी दे सकती है, मर्सिडीज, मगर मर्सिडीज के अंदर जाते जाते दांत भी दर्द करते करते रोते रो सकते हैं हम लोग, है कि नहीं? ये सब सुख सुविधा दे सकती है, मगर भक्ति सिद्धांत महाराज बहुत अच्छा स्टेटमेंट बतलाते हैं इसके बारे में। मालूम है क्या बोलते हैं? मालूम है, दुर्गा जी द्वारा धन सुख योग्यता स्त्री संतान आदि के रूप में प्राप्त वरदान को हमें उनकी कपट कृपा समझना चाहिए। दुर्गा देवी का दो प्रकार की कृपा होता है, एक है निष्कपट कृपा और एक है कपट कृपा। जिन लोगों ने दुर्गा देवी को संतुष्ट करके ये सब धन दिमाग बुद्धि पोस्ट और संतान संपत्ति फैमिली ये सब मांगते हैं, वो दुर्गा देवी देती है, वो लोग सोचते हैं कि ओ अंबे माता ने मेरे ऊपर बहुत कृपा किया, मूर्ख, वो कृपा नहीं है, वो कपट कृपा है, उन्होंने कपट किया हमारे ऊपर। क्योंकि ये सब मिलने पर हम क्या करेंगे? और भोग विलास में लग जाएंगे। और जब भी बहुत सारा धन रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? देखो माता लक्ष्मी का कितना कृपा है इनके ऊपर, कितना धन है। नहीं, वो माता लक्ष्मी का कृपा नहीं है, वो दुर्गा देवी का कृपा है, और वो भी दुर्गा देवी का कपट कृपा है। ऐसा कभी हो सकता है क्या रावण सीता को उठा ले? ऐसा कभी हो सकता है लक्ष्मी एक भौतिकवादी के हाथ में हो और जो उस पैसों को अपने भोग विलास में लगाए? नहीं, लक्ष्मी किसकी भोग विलास के लिए? भगवान विष्णु की भोग विलास के लिए। तो जो पैसा भगवान की कृष्ण की सेवा में नहीं लगाता है, नहीं लगता है, वो लक्ष्मी नहीं है, वो धन लक्ष्मी नहीं है। जैसे रावण ने जिस सीता को रखा था वो सीता नहीं थी, कपट सीता थी, वैसे वो धन लक्ष्मी नहीं है। वो दुर्गा देवी का कपट कृपा है। और जहां पर धन श्रील प्रभुपाद 40 रुपया लेके गए तो फिर संसार में कितना संपत्ति बना, ये धन लक्ष्मी का है, ये धन लक्ष्मी है स्वयं। और ये धन क्या करती है काम, श्री कृष्ण की सेवा में लगी रहती है, वो लक्ष्मी है। ये धनियों के पास जो रहता है जो कृष्ण की सेवा में नहीं लगाते वो धन लक्ष्मी नहीं है, भ्रम नहीं होना चाहिए। और ऐसे जो सब कुछ मिल जाता है सोचिए कि दुर्गा देवी का कपट कृपा है। हम भक्तों को इस प्रकार की कपट कृपा की आशा नहीं करना चाहिए, है ना। फिर प्रसन्न कैसे होती है, भक्ति सिद्धांत महाराज लिखते हैं यह सभी का कर्तव्य है कि वे कृष्ण की निस्वार्थ सेवा द्वारा इस कारागार की अध्यक्षा दुर्गा की संतुष्ट कर उसकी निष्कपट कृपा को प्राप्त करें। हम सारे जीवात्माओं का कर्तव्य क्या है कि श्री कृष्ण की निस्वार्थ भाव से सेवा करके दुर्गा को प्रसन्न करना पड़ेगा, तब दुर्गा का निष्कपट कृपा हमारे ऊपर होगा, फिर हम इस संसार से निकल सकते हैं। चापुरुषी करके नहीं निकल सकते हैं, भौतिक संसार के अंदर ही हम फैसिलिटीज मिल जाए, ये दुर्गा देवी है ना। तो हमको जानना चाहिए दुर्गा देवी किस प्रकार से इस संसार में कार्यरत रहती है, इस दुर्ग का देखभाल करती है। उनको प्रसन्न करने के लिए एक ही सर्वोत्तम उपाय है, वो क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम इससे प्रसन्न होती है। वापी में हम लोगों ने नगर संकीर्तन किया था, बहुत सारे भक्त आए थे, और ये गरबा का भी समय है, वही हमारा भी शाम के समय ही था, कुछ लोग नहीं आए, मतलब क्यों नहीं आए प्रभु जी, हम सोचा लेट हो जाएगा तो उधर गरबा मिस हो जाएगा, मतलब गरबा में करते क्या, और हम लोग उधर डांस करते हैं बहुत अच्छा, मतलब हम लोग भी डांस ही कर रहे थे उधर, तुम तो एक जगह डांस करते, हम डांस कर करके गए थे, मतलब कि देखो तुम लोग पक जाते हो, वो शुरू करते हो 10 बजे, वो भजन धीरे धीरे चालू होते होते और रात को जब मिडनाइट तक पहुंचता है वो रॉक में बदल जाता है, बाद में पता नहीं क्या क्या गाना चलता है उसमें, और उसमें नाचते हो, और कंटिन्यूस एक गाना नहीं हो, हमेशा चेंज होता रहता है, क्योंकि टॉलरेट नहीं कर पाओगे एक ही गाना बजेगा। तो हम लोग ऐसे है कि एक ही 16 ही शब्द 4 घंटे 3 घंटे तक हम लोगों ने गाया और उसी पे नाचा, और कोई ना तो थका ना परेशान हुआ, और वो भी उद्देश्य क्या था, इस विश्व में शांति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, मगर तुम लोग नाच रहे हो किसके लिए, खुद की प्रसन्नता के लिए, उसमें कहां दुर्गा देवी खुश होगी। बीच में दुर्गा माता का फोटो तो रख देते हैं, मगर चारों तरफ जो नाच रहे हो खुद की एंजॉयमेंट के लिए नाच रहे, तो उससे थोड़े दुर्गा देवी प्रसन्न होगी, दुर्गा देवी प्रसन्न होगी उनकी प्रसन्नता के लिए कुछ करो। तो इस प्रकार दुर्गा देवी को प्रसन्न करना है तो श्री कृष्ण की निस्वार्थ भाव से हमें सेवा करना चाहिए। और दुर्गा देवी के साथ क्या रहता है मालूम है, 10 सकाम कर्म, और दुर्गा देवी के साथ रहता है 10 भुजा वाली है ना, और 10 भुजा है, 10 सकाम कर्मों को इंगित करता है। ये पाप मर्दिनी मतलब पापों को नाश करने वाला प्रतिनिधि है, क्योंकि महिषासुर को मारी थी। और शोभा यानी सुंदरता और सिद्धि, सुंदरता और सिद्धि की माँ है, क्योंकि कार्तिकेय और गणेश की माँ है ना वो, इसलिए शोभा कार्तिकेय शोभा का प्रतीक है और सिद्धि का प्रतीक मूर्तिमान स्वरूप है गणेश, और इनकी माँ है वो। जड़ ऐश्वर्य जड़ विद्या रूपी सरस्वती का मध्यवर्ती है, हमेशा जो सरस्वती और लक्ष्मी रहती है उनके बीच में ये रहती है, और ये दोनों सरस्वती लक्ष्मी कौन है मालूम है, जड़ विद्या और जड़ मतलब ये है ऐश्वर्य है, मतलब आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, भौतिक शक्ति है, और ये इस दुर्ग का स्वामिनी है। इसलिए जेल से निकालने के लिए हमको जेलर साहब का चापुरुषी करने की जरूरत नहीं है, उनको प्रसन्न करने का है तो सरकार के नियमों को ठीक से पालन करें, और वो देखेंगी जेलर साहब देखेगा कि कारागार के अंदर इस नियमों को ठीक से पालन कर रहा है, रिकमेंडेशन लेटर ऊपर भेजेगा कि देखो ये अच्छा आदमी छोड़ दो तुरंत, तब कुछ हो सकता है, नहीं तो उधर प्रेसिडेंट के पास लेटर लिखो कि हमको राज क्षमा दिया जाए, तब प्रेसिडेंट चाहे तो छोड़ सकते हैं। इसलिए कि हरे कृष्णा जप करें ताकि दुर्गा देवी प्रसन्न हो और हमको यहाँ से वो छुटकारा दे सकती है, ना कि उनके पास जाके एक धन दौलत और घर द्वार मांगेगी तो नहीं छोड़ेगी वो। इसीलिए ये दुर्गा पूजा का उद्देश्य हो हमको इस भौतिक संसार से निकलने को, उनको प्रार्थना करना चाहिए कि माता इस जो दुर्गा ये जो दुर्ग रूपी भौतिक से निकलने के लिए कृष्ण भक्ति करना है, तो कृपया मुझे मदद करें इस कृष्ण भक्ति करने के लिए। इस प्रकार से प्रार्थना भक्त लोगों को करना चाहिए दुर्गा देवी से। कभी कभी भक्त लोग नेग्लेक्ट करते हैं देवी देवताओं को। हरे कृष्ण में आने के बाद थोड़ा सा फिलोसफी जान के सोचते हो दुर्ग देखो देवी देवताओं का मंदिर है ना, गणेश पूजा सी ऐसे कभी कभी भक्त लोग बोलते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है, इसको ध्यान देना चाहिए हम लोगों को, है ना। देवी देवता है वो श्री कृष्ण के पार्षद है और उनकी सेवाओं में लगे रहते हैं। उनको हम लोग को केयरफुली उनके साथ हैंडल करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको प्रार्थना करना चाहिए। मगर पत्नी हमेशा अपने पति के संग ही रहेगी, उसकी पूजा करेगी, मगर पति के दोस्तों को उनके अनुचरों को सम्मान जरूर देगी। ठीक वैसे हमारा पति है श्री कृष्ण, मगर हम हमेशा उन देवी देवताओं का सम्मान करना चाहिए, उनको प्रणाम करना, अभी नेग्लेक्ट नहीं करते, ये बहुत बड़ा अपराध होगा। और ना ही उन लोगों को भगवान के साथ समान समझना चाहिए, नहीं, वो सब उनके सबॉर्डिनेट है। और बलि का प्रथा जैसे वो जड़ भारत के उदाहरण से देख सकते हैं, दुर्गा माता या काली इस प्रकार के बलियों से संतुष्ट नहीं होती है, श्री कृष्ण के भक्त के ऊपर ज्यादा प्रसन्न रहती है, जड़ भारत की कथा से हम लोग जान सकते हैं। इस प्रकार से दुर्गा देवी को हमें भी प्रार्थना करना चाहिए आज के दिन कि इस भौतिक संसार से निकलने के लिए हमें मदद करे श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए। दुर्गा मैया की। और एक उत्सव है आज मध्वाचार्य का जन्मदिन, संक्षेप में बताता हूँ, ऑलरेडी 9:30 चुका। श्रीपाद मध्वाचार्य हमारे चार संप्रदाय जो है ना, चार वैष्णव संप्रदाय, ब्रह्म श्री कुमार रुद्र, इसमें से ब्रह्म संप्रदाय को इस विश्व में कलयुग में प्रचार करने वाले हैं मध्वाचार्य। पहला आचार्य नहीं मगर प्रचार करने में से पहला आचार्य है, इसलिए ब्रह्म मध्व संप्रदाय बोला जाता है। ये मध्वाचार्य उड़ुपी के नजदीक परशुराम क्षेत्र में एक पाजक क्षेत्र करके एक जगह है, मध्य गेह भट्ट करके एक ब्राह्मण, वेदवती माँ का नाम, इन दोनों के घर में वो जन्म हुए थे। वैसे ये मध्वाचार्य कौन थे मालूम है? मुख्य प्राण अर्थात ऋग वेद के अनुसार जो वायुदेव है ना, वो तीन बार जन्म लेते हैं। एक है त्रेता युग में भगवान रामचंद्र की सेवा करने के लिए हनुमान के रूप में आते हैं, द्वापर युग में कृष्ण की सेवा करने के लिए भीम के रूप में आते हैं, और कलयुग में व्यासदेव जी की सेवा करने के लिए वो मध्वाचार्य के रूप में आते हैं। और वो भी ये कौन सी वायु मालूम है? ये भौतिक जगत की वायु नहीं, आध्यात्मिक जगत की वायु। वे इस प्रकार के अवतार लेते हैं, उन्हें मुख्य प्राण कहते हैं, मुख्य प्राण, क्योंकि ये देवताओं के भी प्राण है। मुख्य प्राण देवरू ऐसा बोलेंगे वहां जाके अगर आप सुनेंगे तो, है ना। और ये मुख्य प्राण तीन त्रेता में है, हनुमान, द्वापर में भीम, और कलि में मध्वाचार्य के रूप में प्रकट होते हैं। खास करके श्रीपाद मध्वाचार्य उस समय प्रकट हुए थे इसे शंकराचार्य की मत को, ये अद्वैतवाद को खंडन करने के लिए, इसलिए द्वैत जो सिद्धांत को स्थापना किए थे। आप देखे रहेंगे उनके फोटो में ऐसे दो हाथ दिखाते हैं हमें से, दो मतलब दो है, जीव और परमात्मा और आत्मा अलग अलग हैं, जीव और भगवान अलग है, एक नहीं है। शंकराचार्य का मत क्या था? मायावाद, दोनों एक है, ऐसे करके बता रहे थे। ये मध्य गए भट्ट लगभग 12 साल तक उपवास किए थे पयोव्रत का, उसके बाद ये मुख्य प्राण देवरूप जो वायु देव है उनके घर में प्रकट हुए। उनके ग्रंथों में ऐसा कथन है कि जो गर्भ में जो बच्चा था, जो जीवात्मा था, वो ये नहीं थे। जन्म होने के बाद बच्चे के शरीर में प्रवेश किए, फिर वो जीवात्मा चला गया था, ऐसे उनके ग्रंथों में ऐसे प्राप्त होता है। कुछ सुंदर सुंदर लीलाएं किए थे मध्वाचार्य। जन्म होने के बाद अद्भुत ये था, बच्चा जन्म होने के बाद रोता है मगर मध्वाचार्य रोए नहीं थे। जन्म होने के बाद उनका चेहरा तो एकदम सुंदर प्रफुल्लित था और सुंदर मुस्कान दे रहे थे, इसीलिए उनका नाम पड़ा आनंद तीर्थ, क्योंकि आनंद में जन्म हुए थे इसलिए आनंद तीर्थ नाम पड़ा। फिर बाद में उनका जब नामकरण संस्कार हुआ तभी वासुदेव करके नाम रखा गया था। उनके पिताजी का काम था कि प्रतिदिन वो जाया करते थे उड़पी, उनका गांव से उड़पी थोड़ा सा दूर है, बीच में जंगल है, पाजक क्षेत्र से उडुपी। उनका पिताजी रोज जाते थे उडुपी में, एक मंदिर है अनंतेश्वर, एक्चुअली वो परशुराम जी है मगर लिंग के रूप में है, तो कभी कभी वो ऐसे कंफ्यूज पैदा करता है। वैष्णवास परशुराम कहते हैं, बाकी शैवास शिव जी कहते हैं। शिव परशुराम जी उस लिंग के अंदर समाये गए थे क्योंकि शिवस्य हृदयम मह्यम, इस बात को साबित करने के लिए ऐसे बताया जाते। वहां पे जाके हमेशा भागवत कथा करते थे, भागवत के ऊपर क्लास देते थे। एक दिन मकर संक्रांति का दिन ऐसा था, लेट नाइट हो गया था, उत्सव खत्म होते होते बच्चे को भी लेके गए थे, बच्चे को लेके और कुछ लोगों के साथ वापस आ रहे थे गांव। तभी क्या हुआ, बीच में जंगल होने के कारण बहुत सारा भूत रहते थे, एक बहुत बड़ा सा ब्रह्मभूत एक व्यक्ति के अंदर घुस गया और वो खून का उल्टी करने लगा, सर पटकने लगा, बहुत कुछ उत्पटांग किया। सब लोग डर गए मगर बच्चे को मध्य गए पकड़े हुए थे, ऐसा बहुत छोटा सा था आनंद तीर्थ। फिर वो भूत क्या बोला मालूम है, चिल्ला चिल्ला के, मध्य रात्रि है, ये हम लोगों का खेलने का समय है मगर तुम लोग बच गए हो क्योंकि ये जो बच्चा है ना तुम्हारे पास है, ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये मुख्य प्राण है। ऐसे करके वो भूत उसके शरीर से निकल के भाग गया, वो व्यक्ति वहां गिर गया। ऐसे ला हुआ था। और एक दिन उनकी माँ को दूसरे के घर में कुछ सेवा के लिए जाना था और बच्चे को माँ ने अपनी बहन के पास, अपनी बेटी के पास रख के चली गई। एक्चुअली मध्य गया भट्ट का पहले भी दो बेटे हुए थे, वो मर गए थे, एक ही बेटी बची हुई थी, बाद में आनंद तीर्थ हुए वासुदेव, जो आगे जाके मध्वाचार्य के रूप में विख्यात हो जाएंगे। और बच्चा बहुत छोटा सा था, तभी लेटा हुआ था, दूध पिला के निकल गई, जैसे ही गया बच्चा रोने लगा। तो उनकी बहन उनको समझाया मगर समझने के लिए नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि अगर कोई सच में रोता है तो उसको कुछ देने पर वो समझ जाएगा, समझाने पर, जो जानबूझ के रोता है वो कैसे समझेगा, वो जानबूझ के परेशान कर रहे थे क्योंकि उनको खाने उनको कुछ लीला करना था। तो उनकी बहन ने सोचा कि इसको शायद भूख लग रहा है, घर में देखा कुछ नहीं मिला, उसको चना मिला, घोड़ों को गायों को खिलाते हैं ना चना, वो चना द्वारा गुनी था। तो उधर वो डर के जब उसकी बहन बाहर चली गई, वो बच्चा क्या हुआ, वो गोनी उधर खींच के नीचे डाल दिया, सभी चना खा गया, पूरा गोनी भर का चना खा गया वो बच्चा और हंस रहा है। माँ दौड़ के शाम को आई, बेटा रो रहा रहेगा, आया तो देखी बेटा रो नहीं रहा है, हंस रहा है, देखा चने का गोनी गिरा हुआ है, चना खत्म और पेट एकदम से फुला हुआ है। और माँ एकदम डर गई, रोने लगी, वैद्य को बुलाया, वैद्य को बुला, वही जाके देखे पेट इत्यादि, खा तो गया सब कुछ मगर बोले कुछ नहीं होगा इसको, क्योंकि ये स्वयं मुख्य प्राण है, ये स्वयं वायु है, इसलिए हजम करने का शक्ति रखते हैं। इस प्रकार से कई अद्भुत लीलाएं किया करते थे उस समय। एक बार वहां बाजू में एक पर्वत है जहाँ पे दुर्गा देवी रहते हैं, वहां का दुर्गा देवी का परशुराम जी ने स्थापना किया था। वो पूरा जगह है ना, पूरा कोस्टल कर्नाटका और इधर महाराष्ट्र से लेके कोंकण एरिया, उसको परशुराम क्षेत्र कहते हैं, और जो उडुपी उसको रौप्य पीठ ऐसे कहते हैं। वो परशुराम जी ने जब दान दे, परशुराम की कथा ही चल रहा है ना, परशुराम जी ने जब दान दे दिया ब्राह्मणों को सब कुछ क्षेत्रियों से जीत के, फिर बाद में सोचे यहाँ रुकना नहीं चाहिए, तो उन्होंने अपने परशु को फेंका समुद्र के पास, तो समुद्र देव ने उनको जगा दिया, उतना उस जगह में परशुराम रहने लगे। वहां पे एक पर्वत है परशुराम पर्वत, वहां पे परशुराम जी रुकते थे, फिर वो दुर्गा देवी का स्थापना किए थे। और वो जो उड़पी है उसको रजत क्षेत्र या रौप्य पीठ कहते हैं, क्योंकि वहां पे एक बहुत लगभग 5 योजन बड़ा सा एक सिल्वर का पीठ बनाया गया था। एक बार ऐसा हुआ, एक राजा वहां पे जो शासन कर रहे थे, वो हल करते समय एक सांप मर गया, तो राजा दुखी हो गए, परशुराम जी को पूछे, परशुराम जी बोले कि एक पीठ बनाओ सिल्वर का 5 योजन विशिष्ट, उसके ऊपर एक सोने का सिंहासन बनाओ और अनंत शेष के साथ, और मैं उसके ऊपर बैठ के यज्ञ करूंगा। तो उसके ऊपर बैठ के परशुराम जी ने यज्ञ किए, यज्ञ करने के बाद उस राजा के लिए, और उसी स्थान में उन्होंने अनंतेश्वर, अनंतेश्वर शिवलिंग में प्रवेश कर लिए थे। वो जगह अनंतेश्वर वो मंदिर बन चुका है, और पूरा उडुपी क्षेत्र में जो ना रौप्य पीठ नीचे है, इसलिए उसको रौप्य पीठ या रजत क्षेत्र ऐसा कहते हैं। तो वहां पे ये मध्वाचार्य का जन्म हुआ था, अलग अलग बहुत सारी लीलाएं किए थे। 11 साल के उम्र में ही उन्होंने संन्यास स्वीकार किए थे। वो चलके जाते थे कि जब भी बच्चा तभी मालूम है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए दुर्गा देवी उनके पीछे चल के जाया करती थी। उस समय ऐसा हुआ था कि वैष्णव हुआ करते थे मगर इन मायावादियों के डर के मारे वैष्णव लोग अपना वैष्णव फिलोसफी को बोल नहीं पाते थे और संन्यास लेते थे तो इस शंकराचार्य की मठ से लेना पड़ता था उनका संन्यास, है ना। ऐसा तो मध्वाचार्य के जो गुरु बनने वाले थे वो भी शंकराचार्य से ही संन्यास लिए थे शंकराचार्य के परंपरा में, और उनके जो गुरु थे वो मरते समय इनको बोल के गए कि देखो असलियत में आज तक हमने जो पढ़ा ना शंकराचार्य का किताब वो सब गलत है। बोले कि क्या बात कर रहे हैं, ना असलियत में भगवान विष्णु का स्वरूप है वो सच्चिदानंद है और ये सब हमको झूठ पढ़ाया शंकराचार्य ने, तो कैसे होगा ना हम अभी बोल नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास उतना क्षमता नहीं है लॉजिक के द्वारा कि हम उनका कर सकें। एक व्यक्ति आएगा जो कि तुम्हारा शिष्य होगा। बोले कि मेरा शिष्य, ना हाँ, तो मैं कैसे पहचानूंगा उस शिष्य को, ना देखना एक दिन ऐसा आएगा वो छोटा सा बच्चा चल के जा रहा रहेगा और उसके पीछे दुर्गा देवी उनको सिक्योरिटी के रूप में जाती रहेगी प्रोटेक्शन के लिए, सोच लेना वो तुम्हारा शिष्य है। तब से लेके वो अनंतेश्वर मंदिर में बैठ के वो इंतजार करते थे वो बच्चा कब आएगा। तो ये कभी कभी उनके माता पिता कोई फेस्टिवल में जाते थे वो पकते थे, उधर विवाह इत्यादि में रुचि नहीं था उनका, वो चले जाते थे दुर्गा देवी के मंदिर, उधर मिल दुर्गा देवी को प्रणाम करके खेल के उधर वापस आते थे, चलते चलते अनंतेश्वर के उधर से चल के जाते थे तो दुर्गा देवी उनके पीछे पीछे चल के जाती थी। उस समय देखा उन्होंने, अरे ये तो सामान्य बच्चा नहीं है। फिर तब से उनको मिश्री देना चालू किया, मिश्री देते थे और श्लोक सुनते थे उनसे, है ना। फिर रोज रोज मिश्री देते देते उनके साथ उनका संबंध बढ़ा, फिर वो घर छोड़ के उनके साथ रहने के लिए तैयार हो गए थे मध्वाचार्य। फिर माता पिता उनको ले लिए थे कि मैं, हमारा एक ही बेटा है, बोले कि ठीक है दूसरा बेटा होने तो घर में रहूंगा। दूसरा बेटा हुआ फिर उन्होंने घर छोड़ के आ गए, 11 साल की उम्र में वो संन्यास ले लिए थे, है ना। ऐसे थे मध्वाचार्य। फिर बाद में उन्होंने पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करके सभी जगह जितने भी मायावादी फिलोसोफर्स थे सभी लोगों को परास्त किए थे उन्होंने, और ये द्वैत फिलोसफी का स्थापना किए थे मध्वाचार्य। इस प्रकार का जो महान आचार्य है, आज उनका आविर्भाव दिवस है, हमें उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हम कभी भी इस प्रकार के मायावाद की उलझन में न पड़े और वे हमको उस प्रकार की शक्ति प्रदान करें। केवल मायावाद मतलब मायावादियों का मायावाद ही नहीं, हमारे अंदर भी मायावाद है। कई चीजें हैं हम लोग को जानना चाहिए कि डीटीस के सामने, गुरु के सामने, वैष्णवों के सामने हमको कैसे व्यवहार करना चाहिए। हमारा अंदर भी मायावाद भरा हुआ है, इन सारे चीजों से हम कैसे निकले। इसलिए श्रीपाद मध्वाचार्य से हमें प्रार्थना करना चाहिए। मुख्य प्राण श्रीपाद मध्वाचार्य की, श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद भागवतम की। वंशा कल्पतरु भक्ति कृपा सिंधु भाई वशिष्ठ पतितानां पावन वैष्णवेभ्यो नमो नमः।